नमस्ते, मैं आरव हूँ। 9R3 के पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। आज मैं इस पुस्तक का सारांश और समीक्षा करूंगा। बायोइन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम्स फिलिप कॉम्पो और पावेल पेवस्नर की कंप्यूटेशनल बायोलॉजी पर केंद्रित पाठ्य पुस्तक है। इसका उद्देश्य जीव विज्ञान के प्रश्नों को केवल जैविक तथ्यों के रूप में नहीं बल्कि स्पष्ट इनपुट, नियमों और हल योग्य एल्गोरिदमिक समस्याओं के रूप में समझाना है। पुस्तक मुख्यतः डीएनए अनुक्रमों में पैटर्न खोजने, जीनोम असेंबली, अनुक्रम संरेखण, विकासात्मक तुलना और जीनोमिक डेटा के विश्लेषण जैसे विषयों पर केंद्रित है। इसकी विशिष्ट शैली सक्रिय अधिगम है। पाठक को सिद्धांत पढ़ने के बाद समस्या को औपचारिक रूप देने, एल्गोरिदम बनाने और उसे कोड में बदलने के लिए प्रेरित किया जाता है। पुस्तक के साथ रोसलैंड मंच के प्रोग्रामिंग अभ्यास जुड़े हैं, जिनसे अवधारणाएं निष्क्रिय रूप से याद करने के बजाय लागू की जाती है। यह पुस्तक जीव विज्ञान और कंप्यूटर विज्ञान के बीच पुल बनाती है, इसलिए इसका फोकस तैयार सॉफ्टवेयर चलाने से अधिक उन गणनात्मक विचारों को समझने पर है जिनसे जैविक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मैं आपको इस किताब से मुख्य बातें बताऊंगा। सबसे पहले डीएनए पैटर्न खोज को स्ट्रिंग समस्या के रूप में देखना। पुस्तक की आरंभिक और आधारभूत शिक्षा यह है कि डीएनए को अक्षरों की एक लंबी स्ट्रिंग मानकर उसके भीतर जैविक रूप से उपयोगी छोटे पैटर्न खोजे जा सकते हैं। उदाहरण के लिए, किसी दिए गए पैटर्न की किसी अनुक्रम में उपस्थितियां गिनने के लिए एक विंडो को क्रमशः आगे बढ़ाया जाता है और हर स्थान पर मिलान जांचा जाता है। यह सरल लगने वाला विचार कई महत्वपूर्ण आदतें सिखाता है। पाठक को अनुक्रम की लंबाई, पैटर्न की लंबाई, आरंभ और अंत की सीमाएं तथा शून्य आधारित इंडेक्सिंग जैसी कार्यान्वयन संबंधी बातों को ठीक तरह परिभाषित करना पड़ता है। जैविक संदर्भ में ऐसे पैटर्न नियामक संकेतों, बाइंडिंग साइटों या दोहरावों की खोज के शुरुआती संकेत दे सकते हैं, लेकिन पुस्तक यह भी स्पष्ट करती है कि केवल मिलान मिल जाना जैविक प्रमाण नहीं है। यादृच्छिक अनुक्रमों में भी छोटे पैटर्न बार बार आ सकते हैं, इसलिए पैटर्न खोज को आगे सांख्यिकीय अपेक्षाओं, बारंबारता विश्लेषण और संदर्भ के साथ जोड़ना आवश्यक होता है। इस खंड का वास्तविक मूल्य किसी एक तकनीक में नहीं बल्कि समस्या को इनपुट, आउटपुट और पुनरावृत्त जांच के रूप में सटीक बनाने की पद्धति में है। दूसरा मोटिव खोज में संभाव्यता और रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम की भूमिका। डीएनए प्रतिकृति या जीन नियमन से जुड़े संकेत हमेशा अक्षरशः एक जैसे नहीं होते। जैविक विकास, उत्परिवर्तन और मापन की सीमाओं के कारण एक ही कार्य करने वाले अनुक्रमों में छोटे अंतर हो सकते हैं। इसलिए पुस्तक मोटिव खोज को सटीक स्ट्रिंग मिलान से आगे ले जाती है। लक्ष्य ऐसे छोटे अनुक्रम पैटर्न पहचानना है जो कई संबंधित डीएनए स्ट्रिंगों में लगभग समान रूप में उपस्थित हों। यहां संभाव्यता उपयोगी बनती है, क्योंकि किसी पैटर्न का महत्व केवल उसकी उपस्थिति से नहीं उसके अपेक्षित संयोग की तुलना में अधिक प्रतिनिधित्व से तय होता है। पुस्तक रैंडमाइज्ड एल्गोरिदम के माध्यम से दिखाती है कि विशाल संभावित खोज स्थान में हर विकल्प की पूर्ण जांच व्यावहारिक नहीं हो सकती। यादृच्छिक प्रारंभ बिंदु लेकर और क्रमशः बेहतर उम्मीदवार चुनकर उपयोगी उत्तर तक पहुंचा जा सकता है। यह तरीका निश्चित रूप से सर्वोत्तम उत्तर की गारंटी हर बार नहीं देता, इसलिए कई बार चलाना और परिणामों की तुलना करना जरूरी है। पाठक के लिए मुख्य सबक यह है कि जैविक डेटा में अनिश्चितता कमजोरी नहीं बल्कि एल्गोरिदम डिजाइन की केंद्रीय शर्त है। अच्छे समाधान गति, अनुमान की गुणवत्ता और सत्यापन के बीच संतुलन बनाते हैं। तीसरा, जीनोम असेंबली में छोटे रीत से मूल अनुक्रम का पुनर्निर्माण। आधुनिक सीक्वेंसिंग प्रायः पूरे जीनोम को एक निरंतर स्ट्रिंग के रूप में नहीं देती बल्कि अनेक छोटे रीड्स प्रदान करती है। पुस्तक जीनोम असेंबली को इन टुकड़ों से मूल अनुक्रम पुनर्निर्मित करने की एल्गोरिदमिक चुनौती के रूप में प्रस्तुत करती है। इसका केंद्रीय तर्क ओवरलैप में है। यदि एक रीड का अंतिम भाग दूसरे रीड के आरंभिक भाग से मेल खाता है तो दोनों के क्रम में जुड़े होने की संभावना बनती है। इन संबंधों को ग्राफ के रूप में दर्शाने पर समस्या अधिक व्यवस्थित हो जाती है। विशेष रूप से डी ब्रुइन ग्राफ जैसी संरचनाएं छोटे अनुक्रम खंडों और उनके विस्तार संबंधों को संगठित करती है। फिर उचित पथ खोजकर संभावित जीनोम अनुक्रम निकाला जाता है। यह रूपांतरण महत्वपूर्ण है क्योंकि यह एक जैविक प्रयोग के आउटपुट को ग्राफ सिद्धांत की समस्या में बदल देता है। साथ ही पुस्तक असेंबली की वास्तविक कठिनाइयों की ओर संकेत करती है। दोहराव वाले अनुक्रम अलग स्थानों को एक जैसा दिखा सकते हैं, कवरेज असमान हो सकती है और त्रुटिपूर्ण रीड्स गलत किनारे जोड़ सकते हैं। इसलिए असेंबली केवल जोड़ने का काम नहीं बल्कि अस्पष्टता का प्रबंधन है। पाठक समझता है कि ग्राफ मॉडल उपयोगी है, लेकिन डेटा की गुणवत्ता और जैविक संरचना उसके निष्कर्षों की विश्वसनीयता तय करती है। चौथा, डायनेमिक प्रोग्रामिंग से अनुक्रम संरेखण और विकासात्मक दूरी। दो डीएनए, आरएनए या प्रोटीन अनुक्रमों की तुलना करते समय मुख्य प्रश्न यह होता है कि दिखने वाले अंतर किन सम्मिलनों, विलोपनों और प्रतिस्थापनों से उत्पन्न हुए होंगे। पुस्तक इस समस्या को अनुक्रम संरेखण के माध्यम से समझाती है और डायनेमिक प्रोग्रामिंग को उसका प्रमुख उपकरण बनाती है। सीधे सभी संभावित संरेखणों को जांचना बहुत तेजी से असंभव हो जाता है। डायनेमिक प्रोग्रामिंग बड़े प्रश्न को छोटे उप प्रश्नों में बांटती है। दो अनुक्रमों के आरंभिक हिस्सों के सर्वोत्तम संरेखण को एक सारणी में संग्रहित कर अगले छोटे निर्णय पहले से निकाले गए परिणामों पर आधारित किए जाते हैं। इस तरह गणना दोहराव से बचती है। स्कोरिंग प्रणाली यहाँ निर्णायक है क्योंकि मिलान, असमानता और गैप के लिए दिए गए दंड ही तय करते हैं कि कौन सा संरेखण बेहतर माना जाएगा। इसलिए एल्गोरिदम का परिणाम पूर्ण जैविक सत्य नहीं, चुने गए मॉडल के अंतर्गत सर्वोत्तम समाधान है। पुस्तक इस बात को व्यावहारिक संदर्भ से जोड़ती है। जहां संरेखण से जीन या प्रोटीन की समानता, संभावित कार्यात्मक संबंध और विकासात्मक दूरी का अनुमान लगाया जा सकता है, संरेखण आधारित सॉफ्टवेयर जैसे ब्लास्ट को समझने के लिए भी यह वैचारिक आधार आवश्यक है। अंत में क्लस्टरिंग और प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस से जीनोमिक डेटा की संरचना, पुस्तक का दायरा केवल अनुक्रम स्ट्रिंगों तक सीमित नहीं रहता बल्कि बड़े जीनोमिक डेटा समुच्चयों की संरचना तक जाता है। जीन अभिव्यक्ति जैसे डेटा में प्रत्येक नमूने को अनेक मापों वाले बिंदु के रूप में देखा जा सकता है। क्लस्टरिंग का उद्देश्य ऐसे बिंदुओं को समूहों में बांटना है जिनके गुण एक दूसरे से अपेक्षाकृत अधिक मिलते हो। जैविक दृष्टि से इससे समान अभिव्यक्ति वाले जीन, संबंधित कोशिकीय प्रक्रियाएं या आबादी के संभावित समूह खोजे जा सकते हैं। पुस्तक यह महत्वपूर्ण अंतर बनाए रखती है कि क्लस्टर एल्गोरिदम द्वारा निर्मित गणनात्मक समूह है, स्वतः सिद्ध जैविक श्रेणी नहीं। दूरी माप, क्लस्टरों की संख्या और आरंभिक स्थितियां परिणाम बदल सकती है। बहुआयामी डेटा में प्रिंसिपल कंपोनेंट्स एनालिसिस उपयोगी पूरक है। यह डेटा की अधिकतम भिन्नता को कुछ नई दिशाओं में संक्षेपित करने का प्रयास करता है ताकि प्रमुख संकेत को कम आयामों में देखा और आगे क्लस्टर किया जा सके। इससे दृश्यांकन और गणना सरल हो सकती है पर कम आयामों में लाने पर कुछ जानकारी छूट भी सकती है। इस खंड से पाठक सीखता है कि डेटा विश्लेषण में एल्गोरिदम, प्रतिनिधित्व और व्याख्या तीनों को साथ लेकर चलना पड़ता है। निष्कर्ष में बायोइन्फॉर्मेटिक्स एल्गोरिदम्स उन विद्यार्थियों और आरंभिक शोधकर्ताओं के लिए विशेष रूप से उपयोगी है जो जीव विज्ञान को प्रोग्रामिंग और एल्गोरिदमिक तक के साथ जोड़कर समझना चाहते हैं। कंप्यूटर विज्ञान के पाठकों को इसमें जैविक समस्याओं की ठोस प्रेरणा मिलती है, जबकि जीव विज्ञान के पाठकों को यह समझ आता है कि अनुक्रम खोज, असेंबली, संरेखण और डेटा समूहकरण के पीछे कौन से गणनात्मक निर्णय काम करते हैं। यह उन पाठकों के लिए कम उपयुक्त हो सकती है जो बिना कोड लिखे केवल लोकप्रिय स्तर का परिचय चाहते हैं, क्योंकि इसका सक्रिय अधिगम मॉडल अभ्यास और धैर्य मांगता है। पुस्तक की व्यावहारिक ताकत रोसलिन आधारित समस्याओं में है। पाठक केवल एल्गोरिदम का नाम या परिभाषा नहीं पढ़ता बल्कि इनपुट को पार्स करने, सीमांत स्थितियां संभालने और समाधान को जांचने की आदत विकसित करता है। समान विषय की अनेक पुस्तकों में सिद्धांत, जैविक पृष्ठभूमि या सॉफ्टवेयर उपयोग पर अधिक जोर हो सकता है। इस पुस्तक की अलग पहचान एल्गोरिदम को छोटे हल योग्य प्रश्नों की श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करना है। प्स्यूडोकोड, समस्या समाधान और प्रोग्रामिंग अभ्यास के बीच इसका संबंध स्पष्ट रहता है। इसके परिणाम स्वरूप पाठक तैयार उपकरणों पर निर्भर रहने के बजाय उनके मूल सिद्धांत, सीमाएं और उचित उपयोग समझ सकता है। पाठ्यक्रम के साथ पढ़ने, स्वाध्याय करने या कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में प्रवेश की तैयारी के लिए यह एक मजबूत आधार प्रदान करती है। यदि आप समर्थन करना चाहते हैं फिलिप कॉम्पो, आप इस किताब को पॉडकास्ट डिस्क्रिप्शन में दिए गए अमेज़न लिंक से खरीद सकते हैं। किताब पढ़ने के बाद मुझे जरूर बताएं कि आपको यह कैसी लगी और अपने विचार शेयर करें। फिर मिलते हैं।